नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के एक दिन के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 5,450 करोड़ से अधिक रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 3,000 करोड़ रुपए की लागत पर निर्मित गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। उन्होंने IIM गुवाहाटी के अस्थायी परिसर और कामरूप जिले के अमीन गांव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के ये राष्ट्रीय डेटा केंद्र का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत भारत के 4 शहरों के लिए 225 इलेक्ट्रिक बसों को झंडी भी दिखाई।
आज केंद्र की बीजेपी NDA सरकार देश के छोटे छोटे शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का जाल बिछा रही है। आज ही मुझे गुवाहाटी में 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला। इस वर्ष के बजट में भी पूर्वोदय स्कीम के तहत 4,000 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा की गई है। इससे आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में असम को भी इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली है।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास विकसित मोरोन बाईपास पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के खानापाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं के व्यापक बूथ सम्मेलन को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में पुदुचेरी के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कराईकल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने और उनकी उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कल साउथ ब्लॉक में मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक हुई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि अब मंत्रिमंडल की बैठकें सेवा तीर्थ में होंगी। भारत के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पूंजी जुटाना है।
आप देख रहे हैं इंडिया में स्टार्टअप्स मात्र 300-400 से 2 लाख से ज्यादा अभी स्टार्टअप्स हो चुके हैं और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। स्टार्टअप्स अपने आप में वो एक डेप्थ, वो एक टेक्निकल एक्सपर्टीज क्रिएट हो रही है जिससे कि डीप टेक की तरफ जा रहे हैं। तो स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, इसमें 10,000 करोड़ रुपीज का गवर्नमेंट की तरफ से फंड रहेगा, साथ में बहुत सारे फंड्स इसके साथ जुड़ेंगे।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्राथमिकता दी है। चेन्नई में आज 2 दिन के राइज कॉन्क्लेव में अपने मुख्य भाषण में उन्होंने कहा कि देश के हर युवा और नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को समझना और उनका इस्तेमाल करना तथा राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनना जरूरी है। तमिलनाडु के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अलग अलग कदमों के बारे में उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के जरिए 30 करोड़ युवाओं ने लाभ उठाया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। समिति ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 12 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर गोहपुर से नुमालीगढ़ तक 715 खंड पर 4 लेन की उच्च गति से चलने के उद्देश्य से एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी परियोजना को भी मंजूरी दी है। BNP ने बांग्लादेश के आम चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। पार्टी ने 297 सीटों के परिणाम में से 209 सीटें जीती है। 300 सदस्यों वाली संसद में सरकार बनाने के लिए 151 सीट की आवश्यकता होती है। ICC पुरुष T20 विश्व कप में कोलकाता में ग्रुप सी के मैच में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक स्कॉटलैंड ने 13 ओवर में 4 विकेट पर 115 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।